तब देखिए कि अब जो ये इस वक्त सिचुएशन है कि इस मुल्क में भी है और उस मुल्क में भी है, अल्लाह ने आपको जहाँ रखा है आप बैठ जाइए, सारी जगह अल्लाह की हैं। अगर आपके लिए सहूलत है कि एक ही जगह पे आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। बस लोग इस पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कुछ लोग घरों से गए हुए थे, क्या वो वापस आए ना, जैसे अब लोगों के बहुत सारे के बच्चे स्कूलों में पढ़ने आए हुए, किसी के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो क्या किया जाए। यानी एक सवाल का मैं इसकी साइड पर जवाब दे दूँ कि आप देखिए कि सबसे पहली बात तो यही है कि एक्स्ट्रा जानबूझ के अगर ऐसी कोई जगह है कि जहाँ मिसाल है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है और आप वहाँ जान के कूदते हैं तो नहीं जाना चाहिए आपको। हदीस में बिल्कुल यही है, क्योंकि उस वक्त बीमारी जो थी वो मुल्क शाम के अंदर थी, तो अब बाहर से आने लोग को रोका गया। आपको पता है कि वहाँ रोका रखा, ये बड़ी तवील हदीस है, जाके हज़रत उमर ने ये बात नहीं थी सुनी हुई, जब अब्दुलरहमान बिन औफ ने ये बात कही तो अल्लाह के नबी ने फ़ौरन मदीना किसी को भिजवा कर इसकी तस्दीक करवाई। इससे पता चलता है कि सहाबाए कराम अल्लाह के नबी की हदीस के मामले में कितने संजीदा थे, वो ऐसे ही मुंह से बात नहीं निकाल देते थे और उसको लेके नहीं चलते थे। जब उसकी तस्दीक हुई तो फिर वहां पे बात रुक गई। अब ये जो बात है कि वो तो सिर्फ मुल्क शाम में थी, तो अब आजकल तो हर ही जगह, इधर भी है तो उधर भी है, तो कैसे है तो कैसे है। तो देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, आप अपने आप को तो बचाएंगे, हदीस पे अमल की वजह से जितना जम के बैठ जाएं, सहूलत में है कर लीजिए। किसी को किसी नागुजीर चीज की वजह से सफर करना पड़ता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको भी बचाएगा, लेकिन इसको बिल्कुल अब इन छुट्टियों को अब एक किस्म की सैरों का तफरीह का जरिया बना लें। बड़ी अजीब खबर मैंने ऐसी कल सुनी कि हमारे मुल्कों में भी अब इस तरह के हालात हुए तो लोगों ने इसको पिकनिक हॉलीडेज बना लिए, और बारबेक्यूज और दिस एंड दैट अवॉइड करना चाहिए। देखिए ना, गैप तो किसी को नहीं पता, और आपकी वजह से किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो ना वो आप पे मुकदमा कर सकता है, ना आप कह सकते हैं मैंने नहीं की, लेकिन मुसलमान दूसरे मुसलमानों को जिस हद तक बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है उसको कीजिए। यही असूल दीनी जगहों पे जाने के लिए है, यही असूल स्कूलों कॉलेजों में है, यही शॉपिंग मॉल्स में है, हर चीज़ जिधर भी। ये तो आप खुद किस चीज़ के लिए कितने सेंसिटिव है ना, सहाबा कराम किस चीज़ के लिए सेंसिटिव थे, उनके लिए वो चीज़ अहम थी। ये तो पता चल गया कि आज के दौर के इंसानों के लिए जो सबसे नागुजीर चीज़ है वो टॉयलेट पेपर बन गया, कि वो मॉल्स में सुना है और ग्रोसरी स्टोर्स में सबसे पहले ख़त्म है और लोगों को एक क्योस पड़ा हुआ है ना। तो ये तरजीहात होती हैं, ऐसी चीज़ों को बड़े खुले दिल से लेना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि मैं किस चीज़ के बगैर रह सकती हूँ और किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती। फिर आप देखिए कि ये जो दूसरी हदीस है ना कि किसी बीमार को सेहतमंद के पास ना लाया जाए, ये बीमार की अपनी जिम्मेदारी है। मॉल्स खुले हैं, बाजार खुले हैं, लेकिन बीमार को नहीं जाना चाहिए। आपको कोई अपने घर आने से रोकता नहीं है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप खुद रुक जाइए। यानी किसी जगह कोई बीमार है या आप बीमार हैं, आपको बिल्कुल भी किसी दूसरे को उस चीज़ की ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब करें क्या, सवाल पैदा होता है इस बात को सुनकर कि अच्छा जी, वबा के मुकामात से तो अब दूर ही रहना है, तो फिर कह लीजिए कि एक आइसोलेशन की कैफियत होगी, आप अपने घरों में रहेंगे, तो करना क्या चाहिए। इसके लिए अब अगली नसीहत सुन लीजिए। आठवीं नसीहत क्या है, नेक अमल और अच्छा बर्ताव करना। यानी आप चाहते हैं कि वबाएं ना फैलें, आप कहेंगे अच्छा वबाएं फैलने में भला नेक अमल और अच्छे बर्ताव की क्या हैसियत है। तो आइए जरा इस पे चंद रिवायात सुनते हैं। पहली रिवायत है हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सनायुल मारूफी तकी मसारिय सुई वल आफाती वल हलकाती वाहलुल मारूफी फिद दुनिया हुम अहलुल मारूफी फिल आखिरती। नेक आमाल बुरी अमवात आफतों और हलाकतों से महफूज रखते हैं, और दुनिया में भलाई वाले ही आखरत में भलाई वाले हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी रिवायत है, हाकिम की रिवायत है, सही रिवायत है। जरा से इस पे गौर कीजिए, अपने आप को हर चीज से फारिग रखें, इन लफ्जों को अपने कानों पे डालिए, नेक आमाल अच्छे, सनाउल मारूफ। ये जो हमने अपनी सारी क्लासेस ऑनलाइन कर दी, इस वक्त भी देखिए कि हम यहाँ आकर बैठे हैं, सारी क्लासेस घरों से लोग ले रहे हैं, आपको इवन लोकल लोगों को भी नहीं जहमत दी जा रही, कोई साथ बैठा है, कोई आना चाहता है, कोई दूसरे घर से मोस्ट वेलकम, कोई नहीं आना चाहता मोस्ट वेलकम। अल्लाह ने आज मेरे आपके लिए इल्म की बात को सुनना सुनाना कितना आसान कर दिया। आप इस वक्त भी घरों से बैठकर कई लोग सुन रहे हैं ना, और कोई अगर आना चाहता है तो आ जाए, अगर वो अपने आप को सेहतमंद समझता है तो आ जाए। अगर कोई घर से निकलता है कुछ एक दो और कामों के लिए, और इसके लिए भी मोस्ट वेलकम, और अगर कोई नहीं आता तो किसी से कोई गिला नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जिस चीज़ से गफलत नहीं हो सकती वो नेक अमल है। और हमारा तो ज़्यादा अमल ही ये होता है जिसको हम अपनी आम जिंदगी में महसूस करते हैं। तो मुझे तो ये लगा कि मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है, घर बैठ कर देखिए ना, वक्त तो बचता है, इसमें तो कोई शक नहीं, आने में जाने में कुछ ना कुछ, फिर दरसों के बाद कुछ बातचीत, मिलना मिलाना, फ़ायदा उससे बहुत होता है, लेकिन वक्त तो लगता है। आप उस वक्त को कुछ एक्स्ट्रा काम में लगा लें। तो मैं तो इस वक्त भी जो आपको पढ़ा रही हूँ, आने से पहले भी यही नियत करती हूँ, जाने के बाद भी यही कहती हूँ, शुरू से पहले एंड से पहले, कि अल्लाह इस अमल को भी तूने की एक चीज़ मना कर, इस तकलीफ़ को उम्मत से और इंसानियत से दूर कर दे। ठीक है, तो अच्छे काम कीजिए, और याद रखिए कि नेक अमाल सिर्फ बैठ के दर्स सुनना और सुनाना ही नहीं है, और भी बहुत सारे नेक काम हैं। अपने घर में बैठ कर देखिए क्या कर सकते हैं, पूरे घर के अंदर रहकर देखिए, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि छोटी जगह में दिमाग ज़्यादा चलता है, गाड़ी में बैठ कर जो काम होते हैं ना वो मेरे से बाहर नहीं होते, वजह कि मेरी पूरी सोच उस गाड़ी की है ना, मैंने इधर देखना है ना उधर देखना है, फ़ोन हाथ में है या नेट है तो और सिचुएशन है, जहाज़ में यानी मुझे लगता है बस मैं इस सीट पे कैद हूँ, वो फिर जो दिमाग खुलता है और जो चीज़ें आती हैं, आइडियाज़, प्लानिंग, इस्तखारे, वो सफ़र में हो जाते हैं। तो आप लोग सोचिए इस वक्त, आप इस वक्त अपने घरों में बैठकर क्या नेकी कर सकते हैं। ठीक है, इबादत की नेकी है, मामलात की नेकी है, अखलाकियात की हैं, फ़राइज़ पूरे कीजिए, और घर को साफ़ कीजिए, ये भी नेकी है, अपना लॉन साफ़ कीजिए, आप अपने आने वाले रमज़ान के लिए घर के फालतू जो चीज़ें हैं काम, उनको निपटा लीजिए, तो इससे क्या होगा, बुरी मौत दूर होती है। देखिए सूउल मौत, अल्लाह ना करे हमारी मौत को ऐसी हो कि हमें यानी कलमा भी ना नसीब हो और लोग हमारे पास भी ना आए, तो मसारिय सूई बुरी मौत, फिर आफतें और हलाकतों से महफूज। आप देखिए ये हदीस के लफ्ज़ कभी आज तक आपने मैंने सुने थे, और अगर ये हालात ना आते तो ये कभी हदीस नज़रों से गुजरी थी कि आफतें और हलाकतें और बुरी मौत, तीन लफ्ज़ों में लिखें, बुरी मौत, आफत और हलाकत, इन तीन बुरी चीज़ों से बचने का नुस्खा नेक अमल है। तो नेक अमल कीजिए, कसरत से कीजिए, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, दुनिया में भलाई वाले ही आखिरत में भलाई वाले हैं। अगर आज दुनिया में आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन है ना, तो इंशाल्लाह कल भी अच्छा ही होगा, जो यहाँ अच्छे वो वहाँ भी अच्छे। और आप सोचिए क्या वाकई हम इसके लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पर, क्या हम वाकई इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमेशा अच्छे काम कीजिए, ऐसे दिल में एक जुमला आ रहा है, फिर कहने को कह दूँ, अगर वाकई हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी हफ्ता हो फिर क्या होगा, क्या पता हमें भी ये ज़रा सीम लाहक हो जाए, फिर क्या मैं इस एक हफ्ते को नेक अमाल के ज़्यादा से ज़्यादा करने या उनको भी छोड़ने में इस्तेमाल करूँगी। तो नेकियाँ कीजिए, जो जिस तरह कर सकता है उसको खूब अच्छी तरह बताए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी नेकी है। फिर आप देखिए अगला एक कॉल भी बहुत प्यारा है इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह का, बीमारी के कुछ बड़े इलाज ये हैं। अब एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, बीमारी के कुछ बड़े इलाज ये हैं, नंबर एक नेकी और भलाई करना, जिक्र, दुआ, रो धो कर मांगना, अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ करना और तौबा करना, कितने हुए, नेकी करना, ये तो आप अपने जाती मामलात में भी करते हैं, और भलाई करना यानी दूसरों के साथ भलाई कीजिए, वेल बींग, फिर जिक्र करना, दुआ करना, रो धो कर अल्लाह से माफ़ियाँ मांगना कह लें, और गिड़गड़ा कर दुआ करना और तौबा करना। देखिए सात इलाज हैं ये, अब आप देख लीजिए आपको मुझे क्या चाहिए इसमें से, और यही उमूर बीमारियों को दूर करने और शिफा हासिल करने में बहुत मौसर है, और ये अद्वियात से ज़्यादा अजीम है। देखिए इब्ने कय्यम के अल्फाज हैं कि दवाएं खाने से ज़्यादा ये सात दवाएं ले लें तो ये ज़्यादा आपको बीमारियों से बचाएंगे। लेकिन आगे लेकिन भी एक है, और ये ज़ादुल मात बुक आप अपने घर में रखें, बहुत प्यारी किताब है, अरबी की भी है, इंग्लिश की भी, और अब तो इसका उर्दू में भी बहुत कुछ है। कहते हैं कि ये चीज़ें दवाइयाँ खाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन ये नफ्स के तैयार होने, इसे कबूल करने और इसके नफ़े का यकीन रखने की मकदार के मुताबिक है। कितनों को समझ आ गई है ये बात, यानी जितना आपको इन पे यकीन होगा ना उतना ये काम करेगी, पूरे यकीन से करेंगे, उदुल्लाह वंतु मोकिनून बिल इजाबा, हो जाएगा, और ढिल मिल यकीन से करेंगे तो कोई नहीं होगा, یعنی یہ ہے وہ چیز جو آج کام میں ہمیں، ڈاکٹر کی دوائی پہ اعتبار ہے، نیکی کرنے پہ اعتبار کوئی نہیں، بھلائی پہ اعتبار نہیں، منہ پہ ماسک پہننے پہ میں یقین ہے کہ یہ جراثیم سے بچائے گا، نقاب پہننے پہ کوئی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آپ کے میرے ایمان پہ، اور یہ تین مرحلے آپ نے نوٹ کیے ہیں، نفس کا تیار، کیا آپ کا میرا نفس تیار ہے ان چیزوں کو، میں پھر بول دیتی ہوں، نیکی، بھلائی، ذکر، دعا، رو دھو کر مانگنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا اور توبہ کرنا، کیا میرا نفس ان سات دعاؤں یا دواؤں کے لیے تیار ہے اور میرا نفس اسے قبول کر رہا اور اس کے نفع کا مجھے یقین ہے؟ مانگیے اللہ سے، دیکھیے پھر آپ بیلنس رکھیے نا، دین کو بھی رکھیے، دنیا کو بھی رکھے، اللہ نے آپ کو دعا بھی دی تو دوا بھی، دونوں کام کیجیے، ایک کو نہ چھوڑیے، دونوں کو لیجیے۔ اور اس کے بعد پھر نوین نصیحت جو سیکنڈ لاسٹ ہے، اور وہ ہے رات کا قیام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ تعالی ومنحاۃ عن الاثم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد۔ قیام اللیل کو تھامے رکھو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یقیناً قیام اللیل اللہ کا قرب حاصل کرنے، گناہوں سے محفوظ رہنے، خطاؤں کے مٹانے اور بیماری کو جسم سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ترمذی اور احمد کی یہ روایت ہے، کیا پتہ چلا؟ اور روایت ہے 4549 نمبر کی۔ کیا اس سے پتہ چلا؟ پہلی بات ہے کہ صرف وباؤں سے بچنے کے لیے نہیں، رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، قم اللیل الا قلیلا، یہ تھے وہ ابتدائی دور کے اللہ کے نبی کو چھوٹے چھوٹے حکم نامے، جس کے بعد پھر نبوت کے کام کے لیے آپ تیار ہوتے ہی گئے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، اللہ کہتے ان ناشیت اللیل یشد وقت مقیلا، تو رات کا کچھ وقت اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیے۔ کیا فائدے ہیں؟ میں نمبروں میں بولتی ہوں تاکہ لکھا نہیں تو لکھ لیں۔ پہلی بات ہے کہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تو نیک لوگوں کا طریقہ اچھا ہی ہوگا نا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ چاہیے۔ پھر گناہوں سے محفوظ رہنے کا راستہ ہے، خطاؤں کے مٹانے والا کام ہے۔ ہیں ہمارے کوئی گناہ؟ ہیں ہماری خطائیں؟ مسٹیکس ہوتی ہیں ہم سے، شارٹ کمنگز ہیں، اور جو یہاں آپ کا ٹاپک ہے، بیماری کو جسم سے دور کرنے کا ذریعہ۔ اور آزما کے دیکھیں اپنے خاندانوں میں، ڈھونڈیے ایسے ایک تہجد گزاروں کو 70-80 سال کی عمروں کے پہنچ کے ابھی تک گلاسز نہیں لگے، ابھی بھی اٹھتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ہیں۔ تہجد قیام اللیل بندے کے جسم میں طاقت بھر دیتی ہے، اب اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس پہ تو اتنا کچھ ہے، لیکن اس وقت اتنا ہی سوچئے کہ اس وبا سے آپ اور میں ایک کام تو سیکھیں، رات کو جلدی سوئیں۔ یہ بھی ایک کام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ان دنوں میں اگر آپ بچے، گھر، میاں، ساری روٹین الحمدللہ آپ کے 100% ہاتھوں میں، سونے، جاگنے، کھانے پینے کو مینٹین کیجیے۔ اگلے ہفتے میں ہم کوئی نہ کوئی ایک سلاٹ رکھیں گے اس پہ کہ ہم ان سارے دنوں میں کیسے یوز کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی بات ہوئی ہے، جلدی سوئیے اور بچوں کو بھی اٹھا دیجیے۔ آپ بچوں سے کہیں کہ ہم سب کا ایک ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے آج کل، ریہیبیٹیشن سینٹرز ہیں ناروے میں، کئی لوگ جو بہت ہی ان کے خیال میں بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک مہینے کے لیے گھر سے دور کر کے نا، تو ریہیبیٹیشن سینٹرز میں رکھتے ہیں، پھر ایکسرسائزز کراتے ہیں، ہیلدی فوڈ دیتے ہیں، یعنی ان کو ایک قسم کی اپنی کیئر کرنا سکھاتے ہیں۔ شاید آج کل آپ کا میرا یہی ہو، سب عذر ختم، بچوں نے اسکول جانا ہے، میاں کو جلدی جانا ہے، ہائے میاں کام سے نہیں آئے اس لیے انتظار ہے۔ روٹین ٹھیک کیجیے گھروں کی، ساتھ بیٹھیے، تینوں کھانے اگر آپ صبح و شام دوپہر کھاتے ہیں ساتھ کھائیے، اور اگر دو ٹائم بھی کھاتے ہیں بیٹھیے، اور اس میں بچوں کو جتنا وقت دیں، اور کوشش کیجئے کہ اس میں بھی ایکسٹرا چیزیں نیٹ سے دیکھنا اور صرف گوگل پہ سرچ کرتے رہنا اس سے اوائڈ کریں، باقی کوئی اہم چیز ہے تو اس کو لیں۔ اور کسی نے بتایا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ اب گھروں میں اتنا لوڈ ہو گیا ہے کہ ہر بندہ ہی نیٹ یوز ہو رہا ہے نا زیادہ ایک وقت پہ، تو پھر وہ کمپنیز پیچھے ریڈیوس کر دیتی ہیں تاکہ سب کو ملتا رہے۔ تو بہرحال ایک ہی سے سب سن لیں، ٹیسٹ ایک کیجئے، چلو بھائی اس گھنٹے میں آپ کی ٹیسٹ کی چیز سن رہے ہیں، آپ اپنی کلاس کا وقت اپنے بچوں سے منوا لیں کہ میں نے بھائی یہ کلاسز کا جو گھنٹہ گھنٹہ یہ تم نے میرے ساتھ سننا ہے، باقی وقت میں جو تم کرو گے وہ میں بھی کر لوں گی، تو اس کو مل بانٹ لیجئے۔ اور آخری چیز کیا ہے دسویں نصیحت اس ٹاپک کے اعتبار سے؟ برتن ڈھانکنا और थैली या मशकीज़े को डोरी से बांधना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, गत्तुल इनाअ व औकु सिका फ़ैन फिस सनति लैलतन यन्ज़िलु फ़ीहा वबाउन ला यमुर्रु बि इनाई लैस अलैहि गिताउन औ सिकाइन लैस अलैहि विकाउन इल्ला नज़ल फ़ीहि मिन ज़ालिकल वबा। सही मुस्लिम की यह रिवायत है 2014। बर्तनों को ढका करो और मिशकीज़े को बांधा करो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा नाजिल होती है, और जो बर्तन ढके हुए नहीं होते या जो मशकीज़े बंधे हुए नहीं होते, इनमें इस वबा का कुछ हिस्सा दाखिल हो जाता है। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये इन हिकमतों में से है जिन तक डॉक्टरों के अलूम व फ़नून नहीं पहुंच सकते। ये ज़ादुल मौत का कौल है। तो क्या पता चला? अब ये हमने 10 नसीहतें तो कर ली, चंद बातें जिस पे इस पूरे टॉपिक को इस वक्त हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो अल्लाह के फजल की उम्मीद करते हुए, इसकी अताओं की ख्वाहिश रखते हुए, इस पर तवक्कुल करते हुए अपने सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दे, क्योंकि सारे मामलात उसी के हाथ में हैं और अल्लाह एक सिलसिले के साथ हमें लेता है। यानी खुलासतन कह दूँ कि आप हर तरह की रेमेडी लीजिए, मीन्स यूज़ कीजिए, दुनियावी भी, तिब्बी भी, हुकूमत के मैयर्स को भी एक्सेप्ट कीजिए और नफ़्स सल्लम की बताई हुई इन सारी बातों पर भी यकीन रखें, लेकिन इन सब के करने के बावजूद अल्लाह का फजल मांगिए कि अल्लाह तू ही फजल करेगा तो बात होगी और अपने मामले उसके सुपुर्द कर दें। दूसरी बात नोट कीजिए, ये सब कुछ करने के बावजूद भी तकलीफ़ आ जाए तो सब्र कीजिए, अजर की उम्मीद रखें, आने वाली मुसीबतों का सामना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़े अजर और सवाब का वादा किया उस शख्स से जो ऐसे वक्त पे सब्र करता है। सूरह ज़ुमर की आयत 10 में आता है, इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को तो इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में पूछा। कई लोगों को ताउन का शायद नाम तो पता हो लेकिन होती क्या है? तो बेसिकली ये पेट की तकलीफ होती है जो किसी भी कौम में फैल जाए, पेट की तकलीफ है। हम तो पूछा कि अल्लाह के नबी ये ताउन क्या है, तो आपने फरमाया, इन हुकाना अजाबन यबसुहुल्लाहु ताला अला मन यशाउ फजअलहुल्लाहु ताला रहमतल लिलमोमिनीन। बड़ी अहम बात है, यानी इस अजाब को मोमिनों के लिए रहमत बना देता है। फलई समिन अबदिन यकउ फित ताउनी फयम कुसुफी बलदिही साबिरन मुख्तसिबन يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا نازل کر دیتا، البتہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا۔ لہذا جو شخص بھی طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا اور صبر کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے وہ اپنے علاقے میں ہی اس یقین کے ساتھ مقیم رہا کہ اسے وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہے، تو اسے شہید کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر والا بھی بنائے اور پھر شہادت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی پیاری دعا سکھا گے، آخر میں میں بھی آپ مانگ لیتی ہوں اور آپ بھی مانگ لیجئے گا، کہ اللہم انی اعوذ بکا من البرسی والجنونی والجزامی ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس، پھل بہری جس کو ہم کہتے ہیں، برس سے، جنون یعنی پاگل پن سے، کوڑ سے اور تمام موذی بیماریوں سے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1554، نسائی 5495 اور مستند احمد 13035۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری تکلیفوں سے بچا کے رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بھی کل میرے اس سوال کے بارے میں سوچا کہ قرآن پاک میں آئسولیشن کی کوئی مثال، آپ لوگوں کو موقع ملا سوچنے کا، کیونکہ آج بہت کانٹراڈکٹ چل رہا ہے اس بارے میں، بحث سے مباحث سے، آئسولیشن ہو کہ نہ ہو، اکیلے چھوڑیں کہ نہ لوگوں کو، گھروں میں رہیں، دوسروں کو بلائیں، کریں نہ کریں۔ تو اگر آپ ہی مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کا پھر جواب دے دوں۔ आप देखिए कि बड़ी रखी बात है, टाइम तो लग रहा है, इस पे लगेगा भी, लगना भी चाहिए। आप देखिए कि आज हम एक वबा जो एपिडर्मल है या कंटेजियस है, उसकी वजह से वाकई अपने ही प्यारों को अलग कर रहे हैं, और करना चाहिए। मैं बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा क्लेवर होना या अपने आप को बहुत ही 30 मार खां समझ लेना, ये कोई दीनदारी नहीं होती। ये वो फड़ें तो हो सकती हैं और हमें कुछ नहीं होता, जी अल्लाह हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। अल्लाह साथ ही है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो करके दिखाया। लेकिन असल में एक ऐसे लोगों को भी आइसोलेट किया गया था जो एक नेकी से पीछे रह गए थे। वो एक नहीं थे, वो एक से ज़्यादा थे। सूरत तौबा का तذکرہ सुनते ही वो लोग जो कुरान तफसीर से पढ़ते हैं, वो तो मुझे समझ आती है, एकदम चले जाते हैं काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी की तरफ। गज़वा तबुक, बिल्कुल आप कह लीजिए कि ना मुवाफिक हालात की बदतरीन सूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े इम्तिहानात आए, कह लीजिए कि उनके ऊपर आखिरी कील था गज़वा तबुक, और अल्लाह के नबी ने सरेआम कह दिया कि सबको निकलना है। वइज़ा क़ीला लकुम, जब तुमसे कहा जाता है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम नहीं निकलते? क्या तुम्हारे पांव जमीन पकड़ लेती है? यानी अभी मैं अंदाज बता रही हूँ, इस पे बड़ी दफा बातें हुई हुई हैं, तफसीर से जाकर सुन लीजिए कि कुछ लोग जब अल्लाह के रस्तों में नहीं निकलते, जबकि इस्तरार भी नहीं होता, हालात भी अच्छे होते हैं, तो फिर बाद में अल्लाह उनसे कट ऑफ कराता है। ये तीन सहाबी जिनमें काब बिन मालिक हैं, अपना वाक्या खुद सुनाते हैं सही बुखारी में, और आखिरी उम्र में ये नाबीना हो गए थे, अपने पोते या बेटे का हाथ थाम के जाया करते थे, तो उस वक्त इन्होंने ये वाक्या सुनाया जो बुखारी में आज भी मौजूद है, कि जब अल्लाह के नबी ने तबूक की कॉल दी, तो उस वक्त से ज़्यादा मेरे हालात अच्छे कभी नहीं थे, लेकिन सिर्फ सुस्ती की वजह से, और कर लूँगा ना, और इसलिए ना, और उस लिए ना, मैं ना गया, और हत्ता के सारा काफिला कूच कर गया, और फिर सुस्ती ऐसी पड़ी कि मैं ना गया। और जब नबी सल्लम आए तो क्या हुआ? وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى الرَّحِيمُ। और इन तीनों को भी उसने माफ कर दिया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब जमीन अपनी सारी वसत के बावजूद इन पर तंग हो गई, और इनको अपनी जानें भी अपने ऊपर बोझ महसूस होने लगीं, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पनाह खुद अल्लाह ही के दामने रहमत के सिवा कोई और नहीं। ला मलजा वला मंजा मिन का इल्ला इलैक, इसको भी लिख ले अपने लिए। जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो सिर्फ अल्लाह ही फिर उस वक़्त बचाता है, फिर अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो इसकी तरफ पलट आए। यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। ये सहाबी ना जा सके, हत्ता के अल्लाह के नबी तबूक से फातिह बन के वापस आए। अब मुनाफिकीन झूठे सच्चे उजर देकर अल्लाह के नबी की नज़रों में सच्चे होके निकल गए। आप ज़्यादा कुरेदते नहीं थे, जब तक कोई खुद ना कहता आप पूछते भी नहीं थे, सुनाओ भाई क्या हालात हैं, क्योंकि लोग फिर पीछे पड़ने को पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि जब मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं अल्लाह के नबी के पास और खूब बातें सुना रहे हैं, और ये तो एक दूसरे को जानते ही होते थे ना, कौन क्या करता रहा पीछे से, लेकिन सामने आने पे अल्लाह के नबी के बड़े मीठे बन जाते थे। खैर, कहते हैं एक दफ़ा तो मेरे भी दिल में आ गया कि मैं भी कह दूँ जाके, फिर मैंने कहा मैं क्यों ऐसे करूँ, मैं तो सच बोलूँगा। अल्लाह के नबी के पास गया और कहते हैं मुझे देख कर अल्लाह के नबी ज़रेला मुस्कुराए। देखिए, कुछ लोगों के साथ दिल लगा होता है, उनको बंदा पीछे होता नहीं देख सकता, चाहे हजारों आगे आ जाए। आपने पूछा, हाँ कहा, आपका क्या मामला? इन्होंने बिल्कुल साफ कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको सच बताऊं, शायर थे ये, बहुत जुबानदान थे माशाल्लाह, बातें तो मैं भी बड़ी प्यारी कर सकता हूँ, मैं आपको सच्चा साबित कर दिखा दूंगा अपने आप को, लेकिन मैं आपके साथ सच बोलूंगा कि मेरे पास कोई उजर नहीं। ऐसे ही बस डिली डेली सोचते रहे दुनिया के काम, हम कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, और इसी तरह की बातें थी। कहने लगे मेरा कोई उज़र नहीं, अब आप जो मेरे साथ मामला करेंगे मैं उस पर राज़ी हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि काब, अब चूँकि आपने अपना मामला अल्लाह की अदालत में डाल दिया है, अब वो जो कहेगा मैं वही करूँगा। ये कहते हैं कि मैं ये बात कहकर ज़रा बाहर आया तो मेरे रिश्तेदारों में से कुछ लोग खड़े थे, मुझे देखकर कहने लगे, तू कितना ना समझ है, वो देख नहीं फलां कितना अच्छा बन गया और अल्लाह के नबी कितने खुश लग रहे थे उससे, और दिस एंड दैट, तूने कैसी बात है कि जब वापस कह क्या, कि नहीं नहीं अल्लाह के नबी वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मेरा तो ये मसला था वो था। कहते हैं अल्लाह ने मुझे जमा दिया, मैंने कहा कि कोई और भी है जिसने मेरी तरह सच बोला है, कहेंगे हाँ वो एक और भी हैं, हिलाल बिन उमैया, बूढ़ी उम्र के थे, और इस तरह मुरारा बिन रबी। जब इनको ये पता चला ना कि और भी हैं, कहने लगे आप मैं सच ही बोलूँगा, मैं नहीं पलटता। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इन तीनों के लिए आइसोलेट होने का हुक्म दे दिया। बस वो जाके आज आप रही को मखतूम में से पढ़ लें, या इन्हीं आयतों के जो मैंने अभी बताया ना, इसका नंबर भी बता देती हूँ, सूरत तौबा की आयत नंबर 118 है, तफसीर सुन लीजिए इसकी, बस आपको समझ आ जाएगा कि आइसोलेशन कहते हैं किसको है। और अगर मुसलमानों की सोसाइटी में एक एक बार नमाज ना पढ़ने पे, हराम खाने पे, झूठ बोलने पे, बदनजरी करने पे, घर वालों ने ही आइसोलेशन की होना, तो कभी फितना बाहर ना आए। जब एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया और कहा गया कि इसका हाथ काटो, तो उसने कहा मेरा नहीं काटो, मेरी माँ का काटो, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा चोरी की थी तो उसने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा। तो बात यह है, अल्लाह के नबी के ज़रिए से ये आइसोलेशन भी सिखाई है। हम बड़े बड़े गलत काम करते देखें और ना बोलें और कह दें कौन बुरा बने, सबको पता है, सबके घरों में किताबें हैं, हाँ वो बुरा रिश्तेदार, उनकी कमाई मशकूक है, क्या हम उनकी दावत खा लें, तो फिर याद रखिए फिर ऐसी वबाएँ आती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें ऐसी चीज़ों की वजह से भी आइसोलेट होने की तौफीक दे कि जो उसके बुरे असरात हमारे बच्चों पे और हमारी नस्लों पे लेके आए। जज़ाकल्लाह खैर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।